हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत और विहा ने बैठकर पहले डिनर किया और उसके बाद वेदांत ने हाथ धोकर टॉवल से हाथ पोंछते हुए एक्साइटमेंट में उसे बॉक्स देकर कहा, टोमेटो, अब तो मैं इसे खोल सकता हूँ ना। आई कांट बिलीव तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो। विहा ने छोटी सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाया और खुद जाकर बेड पर बैठ गई। वो अपने हाथों को आपस में उलझाए वेदांत को देखने लगी, जो अब बॉक्स की टेप निकालते हुए उसे खोल रहा था। बॉक्स खोलते ही वेदांत का हाथ अपनी जगह रुक गया और उसने हैरानी से विहा की तरफ देखा। ये तुम? विहा ने जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। वो, मैंने आपका फेवरेट वास तोड़ दिया था ना, तो मैं ये गुलदस्ता लेकर आई हूँ। ये कितना सुंदर है ना, और देखो मैं इस पर सॉरी भी लिखवाया है शॉप पर जाकर। वेदांत ने अपने हाथ में लेकर उस गमले को बारीकी से देखा। वो एक मिट्टी का गमला था जो बेहद खूबसूरत था, और उस पर एक तरफ कैलीग्राफी स्टाइल के फॉन्ट में लिखा सॉरी तो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। सॉरी के बगल में एक छोटी सी डॉल बनी हुई थी जिसने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ रखे थे। उसे देखकर वेदांत एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे ऐसा हंसना देखकर विहा का चेहरा उतर गया और वो जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, आप मजाक बना रहे हैं इसका, मैं बहुत मन से लेकर आई हूँ इसे। वेदांत ने उस गमले को टेबल पर रखा और विहा के करीब आकर उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, यू आर सो क्यूट टोमेटो, और तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है। इतना बोलकर उसने झुकते हुए आहिस्ता से विहा के गाल को चूम लिया, जिसके साथ ही मानो विहा के शरीर में करंट सा दौड़ गया। वो तुरंत वेदांत से दूर हटकर अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए बोली, आप ऐसे मेरे करीब बताया कीजिए, मुझे बहुत अजीब लगता है। वेदांत के होठों पर एक स्माइल आ गई। वो फिर से विहा की तरफ बढ़ते हुए बोला, पर मैं तो आऊंगा चाहे तुम्हें कैसा भी लगे। विहा पीछे खिसकते जा रही थी और एक वक्त आया जब उसके पास पीछे जाने के लिए और जगह नहीं बची और वो बेड से टकराते हुए बेड पर जा गिरी। वेदांत उसके ऊपर झुकते हुए उसके माथे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, वंस अगेन थैंक यू सो मच टोमेटो। इतना बोलकर इस बार उसने झुकते हुए आहिस्ता से उसके होठों के किनारे को चूम लिया, जो विहा के स्माइल करते वक्त वेदांत को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। विहा के माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थीं और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से ही बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वेदांत उसकी बेचैनी को समझ सकता था, इसलिए वो जल्दी ही उससे दूर हो गया। वेदांत का खुद का दिल बेचैन था। वो अपनी धड़कते दिल पर हाथ फेरते हुए बोला, सो जाओ टोमेटो, बहुत दुखी हुई हो ना, गुड नाइट। विहा तो जैसे मौका ढूंढ रही थी। वो झट से उठी और बेड पर लेटे हुए खुद को कंफर्टर से ढककर जल्दी से बोली, गुड नाइट पतिदेव। वही वेदांत जल्दी से बालकनी में गया और अपना फोन लेकर अपना शिफ्ट किया हुआ ऑर्डर देखने लगा, जो अब डेस्टिनेशन से आउट हो चुका था, जिसका मतलब था वेदांत अब उसे कैंसिल नहीं कर सकता था। वेदांत ने अपने सर पर फोन मारते हुए कहा, क्या बेवकूफी कर दी मैंने, पता नहीं मेरे साथ ससुर क्या सोचेंगे कि मैं उनको पैसा गिफ्ट भेज रहा हूँ। कहीं दूसरी तरफ रूहान अपने कमरे की बालकनी के सामने दोनों हाथ फैलाए खड़ा था और उसके सामने अना ही गुस्से से उसे घूर रही थी। रूहान जी, आप मुझे बालकनी में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे वहाँ बैठने की आदत हो गई है, बस मुझे थोड़ा सा काम है, फिर मैं वापस अंदर आकर आपके पास ही होने वाली हूँ। रूहान ने घबराहट से सूखे अपने होठों पर जब फेर कर कहा, नहीं आज मैं आपको बालकनी में नहीं जाने दूंगा। अनाही को पर्दे लगे होने की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि आखिर बालकनी में हो क्या रहा है। उसने गुस्से से कहा, रूहान जी मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैडम आपको धक्का देकर अंदर चली जाऊंगी। रूहान ने अपने फैले हुए हाथों को जोड़ते हुए कहा, प्लीज प्लीज मैडम जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे, थोड़ी कर रहा हूँ, प्लीज मत जाइए। अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। रूहान ने जल्दी से कहा, होल्ड ऑन बस दो मिनट। इतना बोलकर वो अपनी कपबोर्ड की तरफ दौड़ा और वहां से एक बॉक्स निकालकर अनाही को देते हुए बोला, क्या आप मेरे लिए पहन सकते हैं प्लीज। अनाही को लग रहा था रूहान बस हर सेकंड उसे शॉक दे रहा है। आज पहली बार कमरे से बिल्ली के बोलने की आवाजें नहीं आ रही थी, क्योंकि रूहान शुभर और कालूराम दोनों को बटलर के पास छोड़कर आया था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। अनाही ने गहरी गहरी सांस लेकर वो बॉक्स रुहान के हाथों से लेते हुए कहा, आपको पता है आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, इतनी देर में 10 मेल्स फॉरवर्ड कर देती। रुहान ने वापस अपने हाथ जोड़कर मासूम नजरों से अनाही को देखा। उसके क्यूट से चेहरे को देखकर अनाही उसे मना नहीं कर पाई और ना में सर हिलाते हुए बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता, वैसे है क्या इसमें। रुहान ने उसे क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब खुद वहाँ जाकर देख लीजिए। अनाही हल्का सा मुस्कुराई और फिर क्लोजेट के अंदर चली गई। उसके जाते ही रुहान ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली। अभी 2 ही मिनट हुए थे उसे आराम से खड़े हुए कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो लगभग दौड़ते हुए कैमरे से बाहर चला गया। वो चाहता था जब तक अनाही तैयार होकर वापस आए वो खुद भी बाहर से केक लेकर अंदर वापस आ जाए। बेचारी डिलीवरी बॉय को पिछले 10 मिनट से उसने दरवाजे पर खड़ा कर रखा था। अनाही ने क्लोजेट के अंदर जाकर उस बॉक्स को खोला और उस लैवेंडर साड़ी को देखकर वो हैरान रह गई। वो अपने होठों पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से बड़बड़ाई, ये तो बहुत खूबसूरत है, और फिर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, पर किस लोकेशन के लिए आज। आज बोलते बोलते रुक गई, 1 मंथ एनिवर्सरी है बस इसलिए। रुहान जी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, आई कांट बिलीव। उस लैवेंडर साड़ी के साथ अनाही के लिए मैचिंग इयररिंग्स भी थे जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अनाही फिर उसे साड़ी को पहनकर अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाती है ताकि रुहान के किए एफर्ट्स थोड़े से भी फीके ना पड़ जाएं और वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आए। वहीं बाहर रुहान भी अपने कपड़े चेंज कर चुका था, सिर्फ चॉकलेट कलर का 3-पीस सूट पहना था तो मिरर में खुद को देखकर अपने कोट का मिडिल बटन ठीक कर रहा था जो हो नहीं रहा था। उसने जल्दी से फिर परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़क लिया और खुद को ईजल करके देखने लगा कि अगर बाय चांस अनाही उसके करीब आए तो कहीं उसके अंदर से पसीने की बदबू तो नहीं आएगी। लेकिन वो खुद से सैटिस्फाइड था, वो काफी अच्छा लग रहा था। रुहान के लाल होते कान ये बयान कर रहे थे कि आज उसे कितनी शर्म आ रही है। वो फिर से झुंझलाकर अपने कोट का बटन ठीक कर ही रहा था कि अचानक क्लोजेट का दरवाजा खुला। रुहान की धड़कनें बढ़ गईं। उसने धीरे से पलके उठाकर क्लोजेट के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ अनाही अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ। रुहान हल्के से बुदबुदाते हुए बोला, जैसा कभी सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था रुहान को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है, वो बस उसी जगह मूर्ति बन अनाही को देख रहा था। अनाही ने हल्का सा मेकअप भी किया था, उसकी काजल से सनी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। माथे पर चिपकी छोटी सी लैवेंडर बिंदी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अनाही अपने बाल संवारते हुए धीमे कदमों से रुहान के पास आई और रुहान के मानो सांसें थमने को तैयार थीं। अनाही ने अचानक ही उसका हाथ उसके कोट से हटाते हुए उस बटन को ठीक करके धीरे से कहा, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ जितनी चमक आपकी आंखों में आई है। रुहान ने हड़बड़ा कर अपनी नजरें चुराते हुए कहा, आप तो हर ड्रेस में खूबसूरत लगती हैं मैडम जी।
अनाही ने उसके गले में अपनी दोनों बाहों को डालते हुए कहा, पर इस साड़ी में आपकी पसंद शामिल है ना, तो हो सकता है कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो, बताइए ना कैसी लग रही हूँ।